यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गे सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज। हमेशा की तरह आज भी हम सब बैठकर एक साथ अपने जीवन के विकास के लिए कुछ बातें करेंगे। जैसा कि मैं अपने जीवन में देख रहा हूं और सबके जीवन में देखता हूं, आप खुद भी देखें, इस चीज की तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है, कभी कभी जाता है। थोड़ा सा इस चीज की तरफ ध्यान दें कि इन दिनों हमारा जीवन, जिसको हम जीना कहते हैं और जिसको हम जानना कहते हैं, उन दोनों के बीच बहुत फासला हो गया है। जीना कुछ अलग है और जानना कुछ अलग हो गया है। जानते हम बहुत सारी बातें हैं और निरंतर जानने के लिए उत्सुक भी है, लेकिन वो सारी बातें जानने के बाद जो हम जीना जिसे कहते हैं वो ठीक ठीक हो पाएगा या नहीं, इस बात का ध्यान नहीं रख पा रहे। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में जानना कुछ अलग ढंग का हो और जीने की प्रक्रिया कुछ अलग हो तो उलझन खड़ी होती है। और मुझे लगता है कि आज बड़ी से बड़ी उलझन हमारी यही है। हम जानते हैं कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी कोशिश उसी नश्वर शरीर के पीछे जी जान से भागने की है। तो फिर ऐसा जानना किस काम का जो कि जीने के विपरीत खड़ा हो जाए, ऐसा हमने शायद कभी विचार नहीं किया होगा। श्वेत केतु एक अच्छा युवक हुआ, वो ज्ञान की खोज में निकला। उसने सोचा कि कुछ जान लेना चाहिए, जीवन के बारे में जान लेना चाहिए, तो अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। इतना अधिक ज्ञानवान हो गया कि जो भी सामने आता वो सब उससे ज्ञान के मामले में हार जाता था। तब उसको जीने में आनंद नहीं आता था, अब उसको अपने ज्ञान और दूसरे के हारने में आनंद आता था। जिस ज्ञान को अपने जीवन के आनंद पाने के लिए सीखना शुरू किया था, जितनी जानकारी अर्जित करी थी अपने ही आत्मा के बारे में, अपने ही जीवन के योगी न होकर के बाधक बन गई। और एक दिन गुरु सामने बैठे थे और कोई वाद विवाद करने के लिए श्वेत केतु के पास आया, और श्वेत केतु एक के बाद एक तर्क देता चला जाता था, और वो जो वाद विवाद के लिए आया था उसका सिर नीचा होता चला गया। और ये आनंद मान रहा था कि मेरे तर्क एक से एक बड़े हैं, मैं कितना बड़ा जानकार हूं, और आज तो गुरु भी इस बात का लोहा मान लेंगे कि उनका शिष्य कितना ज्ञानवान हो गया। पर गुरु मुस्कुराते चले जाते थे और श्वेत केतु तर्क पर तर्क देता चला जाता था, और सामने जो बैठा हुआ था वो हतप्रभ था। जितने लोग सुन रहे थे वे उसके ज्ञान से चमत्कृत हो रहे थे, लेकिन गुरु मुस्कुराता चला जाता था। और जैसे ही श्वेत केतु ने आखिरी तर्क दिया और चुप हुआ, गुरु की तरफ इस दृष्टि से देखा कि शायद अब गुरु भी शाबाशी देंगे, तो गुरु ने मुस्कुराकर सिर्फ इतने ही कहा कि श्वेत केतु, तू इस तर्क के जाल से कब मुक्त होगा? मैंने तुझे जो ज्ञान दिया था, तू अब उस ज्ञान के जाल से कब मुक्त होगा? जहां से अपेक्षा थी कि शाबाशी मिलेगी, जहां से अपेक्षा थी कि पीठ थपथपाई जाएगी कि बहुत ज्ञानवान हो गया है, वहां से यह सुनने मिला कि श्वेत केतु, तू कब उस तर्क के जाल से और उस ज्ञान से मुक्त होगा? ज्ञान पाने के लिए है या कि ज्ञान मुक्त होने के लिए? ज्ञान अर्जित ही इसलिए किया जाता है, जानकारी अर्जित ही इसीलिए की जाती है कि हम मुक्त हो सके, उस जानकारी तक से मुक्त हो सके। जिस चीज के बारे में हम जानते हैं वो कब तक, जब तक उस चीज को पाया नहीं तब तक ना, उस चीज को पा लेने के बाद उस चीज की जानकारी, उस चीज की जानकारी तो क्या, उसको पाया नहीं हमने, अब जानकारी तो पीछे छूट गई। मैं जब तक जानता नहीं था तब तक जानने की कोशिश करी, जान लेने के बाद उस चीज का आनंद, उस चीज को पाने की कोशिश भी तो होनी चाहिए। आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी हमने जाना है, क्या हम उसे अपने जीवन में पाने और जीने की कोशिश करने की कोई तैयारी करेंगे? हमारे पास क्या है, हम कितना जानते हैं, ये उतना कीमती नहीं है भैया। हम क्या हैं, कैसे जीते हैं, ये ज्यादा कीमती है। हम क्या हैं और कितना जानते हैं, हो सकता है हम डॉक्टर हों, हो सकता है हम इंजीनियर हों, हो सकता है हम फिलोसफर हों, हो सकता है हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हों, हम हो सकता है कि बहुत कुछ हो सकता है कि बहुत कुछ जानते हो, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे जीते हैं इससे फर्क पड़ता है। क्या हम आगे आने वाले दिनों में अपने जीने की कोई तैयारी करेंगे? जानने की तैयारी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जानते तो हम बहुत हैं, वर्षों से जानते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो पर्व आने वाला है ये जीने की तैयारी के लिए आना। वैसे तो रोज ही पर्व है, जिस दिन आप तैयारी कर लीजिएगा जीने की उसी दिन पर्व बना लीजिएगा, और जब तक आपके जीने की तैयारी नहीं है तब तक ऐसे सैकड़ों पर्व आ जाएंगे लेकिन जीवन पर्व नहीं बन पाएगा। जीवन में हम जो कुछ भी घटित होता है उसकी हम रिप्लाई क्या देते हैं, जीवन इस पर डिपेंड करता है, पूरा जीवन इस बात पर डिपेंड करता है। जीवन में जो कुछ भी हमारे सम्मुख आता है उसका हम रिएक्शन क्या करते हैं, हमारी अनुभूति क्या है। दो ही चीजें, अनुभूति और प्रतिध्वनि। जो भी आवाजें मेरे तक आती हैं उस सब के लिए मैं प्रतिध्वनि क्या, रिप्लेस इससे मालूम पड़ता है कि हम कैसे जीते हैं। पॉल्यूशन एक आने वाला है और उसकी तैयारी भी हमें करनी है, छोटी छोटी चीजों की तैयारी करते हैं। चार कदम बाहर जाना हो तो जरा चेहरा पहुंच लेते हैं, एक बार दर्पण में देख लेते हैं कपड़े ठीक हैं कि नहीं है। चार कदम चलने के लिए तैयारी करना पड़ती है, छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं तो तैयारी करनी पड़ती है, इम्तिहान देना हो तो उसके पहले तैयारी करनी पड़ती है, इवन किसी को गाली देनी है तो भी तैयारी करना पड़ती है। पाप करना हो तो आदमी तैयारी करता है, पाप करने की तैयारी करता है। और हम एक बहुत बड़े पर्व के लिए क्या कोई तैयारी नहीं करेंगे? तैयारी तो वैसे हमने की है, कहीं बहुत बढ़िया पंडाल बनाया जाएगा, कहीं जगह मगर रोशनी लगाई जाएगी, कहीं पर प्रतियोगिताएं होंगी, रागद्वेष की प्रक्रिया होगी कि मैं प्रथम आऊंगा, वीतरागी के सामने रागद्वेष की पूरी खुली प्रक्रिया होगी कि मैं प्रथम आऊंगा कि वो प्रथम आऊंगा कि ये पार्श्ववर्ती तो नहीं कर लेगा। ऐसे और कौन होंगे? हम खाना पीना छोड़ देंगे, दिन दिन भर नहीं खाएंगे, कोई एक बार नहीं खाएंगे, कोई दो बार नहीं खाएंगे, कोई शायद दिन भर नहीं खाएंगे, कोई हरी सब्जी नहीं खाएंगे, कोई बहुत सारी पूजाएं विस्तारेंगे, हम सब करेंगे। यही तो तैयारी है। अगर इसी का नाम तैयारी है तो ये तैयारी तो आपने पिछले वर्ष भी करी थी, नहीं करी थी? करी तो थी, लेकिन वहीं खड़े हुए। इसका मतलब है कि तैयारी करने के बाद यात्रा शुरू नहीं हुई है, और ये तैयारी यात्रा के लिए थोड़ी बहुत जरूरी तो है, पर ये यात्रा के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। इस तैयारी से यात्रा की शुरुआत तो हो सकती है, पर इससे अंत नहीं हो सकता यात्रा का। यात्रा का अंत तो होगा जबकि मैं देह से विदेह को प्राप्त कर लूं, जबकि मैं अपने आत्मा का अनुसंधान करूं। ये सारे साधन मुझे अपने आत्मा तक पहुंचने के लिए हैं, मुझे उस वीतरागता को अपने भीतर अनुभव करने के हैं। अगर मैं उस वीतरागता के अनुभव से इन दस दिनों में चूक जाता हूं तो इसका मतलब तैयारी में कहीं ना कहीं कोई खामी तो है। अगर मैं इस देह की ही फिक्र में लगा रहता हूं और किसी विदेह को जो भीतर बैठा हुआ है उसे भुलाए रहता हूं तो फिर मेरी ये तैयारी साधक नहीं हुई। हमें देख लेना पड़ेगा कि इन दिनों आने वाले दिनों में हम अपने को किस तरह तैयार कर रहे हैं, किस किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, और हम क्या रिप्लाई देते हैं इन आने वाले दस दिनों में, किस तरह हम रिप्लाई देते हैं। और बहुत कठिन है ये तैयारी। क्या कोई ऐसा कीमिया हम खोज लेंगे कि जब कोई गाली दो और हम गुस्सा नहीं हो? रिप्लाई नहीं देने वाले हैं? कैसी कोई तैयारी हमारी है? और अगर कोई ऐसी तैयारी करेगा तो एक चीज ध्यान रखना, वो पागल ही कहलाएगा। कोई उत्ती गाली दे और आपको रिप्लाई तक नहीं दे, क्या समझे जाएंगे आप? बड़े दल, बड़े कमजोर, बड़े काय माने जाएंगे। अगर ऐसी कोई आपकी तैयारी हो, कायर होने की तैयारी हो, तब तो पॉल्यूशन आपके सामने है। अगर क्षमा कर देना कायर का है तो कह रहा हूं मैं कि आप ऐसे कायर होने की तैयारी कर लीजिएगा, ऐसे कमजोर हो जाने की तैयारी कर लीजिएगा। मैं सबकी सब बात चुपचाप स्वीकार कर लेता हूं, बहुत पहले लिखा था मैंने, मैं सबकी सब बात चुपचाप स्वीकार कर लेता हूं। लोग कहते हैं सब कुछ स्वीकार कर लेना कमजोरी है, सो मैं लोगों की इस बात को भी स्वीकार कर लेता हूं। से मैं लोगों की इस बात को भी स्वीकार कर लेता हूं, क्या करूं मैं कमजोर हूं, मुझसे व्यर्थ लड़ा नहीं जाता। ये जो व्यर्थ हम अपने को उलझन में डालने की प्रक्रिया करते हैं कि हम उससे विद्रोह कर पाएंगे आने वाले दिनों में और ऐसी कोई तैयारी कर पाएंगे, और पागल करार दिए जाने के बाद भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा धनपति था, बहुत धनवान व्यक्ति था, उसके जीवन में जो कुछ घटित हुआ उसने अपना संस्मरण सुनाया और वो मैंने कहीं पढ़ा था। ऐसा शायद संभव है आज के समय में। एक दिन उसके मन में क्या आया, उसने दस हजार डॉलर उसने बैंक से निकलवाए और वो ले जा रहा था घर की तरफ, और अचानक उसे लगा कि क्या रखा हुआ है इन डॉलर में और इन रुपयों में, इन पैसों में, और उसको बोध जागृत हो गया। तो कहते हैं उसने बस में 100-100 डॉलर निकाल के लोगों को देना शुरू कर दिए। लोग अचंतित, जबकि लोग रुपए की दौड़ में दौड़ रहे हैं और वो रुपए लुटा रहा, और वो ये कहता जाता था जो ले लेता था कि धन्यवाद करता आपकी कि आपने ले लिए। अभी तक तो छीन करके लोगों ने लिए हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो दे रहा है और साथ साथ देने के धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत सौभाग्य कि आपने ले लिए। वाकई में देने वाला कीमती नहीं है, माने वाला कीमती। अगर वो इनकार कर दो कि नहीं लेते तो कर लो, क्या करोगे आप। चीजों का हल्ला मच जाता है और शायद ऐसी ही चीजों का हल्ला मचता है। पुलिस आदमी उसको पकड़ लिया, बताइए, और कहा कि तू पागल है, ये क्या कर रहा है, लुटा रहा है। उसने कहा पागल तो अब तक था, ठीक हो गया हूं अब। उसने कहा ये इस तरह की बात कर रहा है तो लग रहा है कि बिल्कुल पागल है। उसको बंद कर दिया। जब उसके जीवन साथी आई तो उसने कहा कि क्या करते हो, क्या पागलपन की बात। उसने कहा तुम भी ऐसा ही कह रहे हो, मैं तो पहले पागल था कि कागज की टुकड़ी उनके पीछे में भागते थे, और अब जब मैं उनके पीछे नहीं भाग रहा हूं तो मुझे पागल कह रहे हो। पर किसी ने उसकी नहीं सुनी, साइको ट्रीटमेंट तक करवाया गया उसका, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया कि जब तक ये इस बात को स्वीकार न कर ले कि पैसे में दम है और उसके पीछे दौड़ना चाहिए, तब तक इसका इलाज चलते रहना चाहिए। कोई अगर ये स्वीकार कर ले कि पैसे में कोई ताकत नहीं है और मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूं, मैं पैसे को छोड़ता हूं, तो उसका इलाज होता है कि ये जरूर जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसी गड़बड़ जो आगे आने वाले दिनों में अगर आप स्वीकार करना चाहें तो उसकी आपको कोई तैयारी कर लेनी पड़ेगी। क्या कोई रसायन हम अपने भीतर ऐसा नहीं ईजाद कर सकते हैं कि जब कोई पागल और मैं क्रोध न करूं, कि जब कोई अहंकार से मुझे डिफीट करना चाहे तब मैं उसका जवाब विनय से दूं, जब कोई मेरे साथ छल कपट करे और मैं उसके साथ सरलता से पेश आऊं, जबकि लोग अपवित्रताओं से घिर रहे हों तब मैं अपने भीतर की पवित्रता को कायम रख सकूं, जबकि चारों तरफ लोग अपना संसार झूठ पर खड़ा कर रहे हों, मैं सच्चाई के सहारे एक तरफ खड़ा हो जाऊं, जबकि सारे लोग अव्यवस्थित और अनिश्चित जीवन जी रहे हों, तब मैं शांत और संयमित जीवन जीने की कोई कोशिश कर सकूं, जबकि लोग चीजों को पकड़ने और अपना बनाने में लगे हुए हों, तब मैं इस होड़ से बच करके चीजों को छोड़ने में आनंद लेने लगूं, जबकि लोग सब तरफ से हर चीज को अपने मानने की कोशिश कर रहे हों, तब मैं एक तरफ खड़े होकर कह सकूं कि ना किंचनम अस्ति, यहां मेरा कुछ भी नहीं। जबकि लोग तपस्या से डरते हो, मैं शांत भाव से तपश्चरण के लिए अपने को तैयार कर लूं। जबकि लोग पांच इंद्रियों के विषय और अब्रह्म की तरफ, काम वासनाओं की तरफ दौड़ते हो, मैं तटस्थ होकर के आकाश की तरह निर्मल होकर के और बैठ जाऊं। कैसी कोई तैयारी हम आने वाले दिनों में करेंगे? ज्ञान अगर इस तैयारी में सहयोगी बनता है तो वो ज्ञान सार्थक है, वरना तो हमारे पास जानकारी बहुत है लेकिन जीने का आनंद हमें उतना ही कम होता चला जा रहा है। कोशिश करिए। वैसे अपन कहते तो यही है कि हम अपने को जानते हैं, पर आजकल तो अपने को जानने की प्रक्रिया भी बहुत अलग हो गई है। चर्चा कर लेते हैं हम अपने आत्मा के बारे में कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, और फिर डर मिट जाता है। एक आध घंटे ऐसी चर्चा कर लो तो फिर चोरी चपारी बेईमानी चाहे जो करते रहो वो तो अपवित्र, वो तो नहीं, वो तो शुद्ध है भैया, उसका स्वभाव है यार। फिर चाहे कुछ भी करो, तुम जितने उपद्रव करो कर सकते हो, बड़ा कंसोलेशन, बड़ा रेस्ट फील होता है कि अभी तो समझ के आए अपन, जो पवित्र है, बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, स्वतंत्र। किसी ने ये बात आज तक कही नहीं थी। लोग कहते थे तुम बड़े अपवित्र हो, बेईमान हो, ये पहली बार कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव तो देखो, बड़े शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो। सो घंटे भर ऐसा कंसोलेशन, ऐसा आत्म सांत्वना देकर के भी हम बहुत लौट के देख चुके हैं। ऐसा ज्ञान भी हमने बहुत पाया है, लेकिन है तो वहीं के वहीं कमल के गीत गा करके कीचड़ में खड़े होना और कीचड़ का अनुभव करना और गीत कमल के गाना, बहुत दिन हो गए भैया। एक आध दिन उस कमल को अपने भीतर एहसास करने की भी तो कोशिश करें। उस कीचड़ से निकले बिना उस कमल को तो नहीं पाया जा सकता। जब तक कीचड़ का एहसास हो रहा है तब तक वो कमल नहीं पाया जा सकता। जब तक कि जीवन विषय और वासना में लगा हुआ है तब तक आत्मा के उस आनंद की खोज के लिए निकला भी नहीं जा सकता। इतनी तैयारी तो करनी पड़ेगी कि अगर मुझे देह से विदेह होना है तो उस देह के राग से मुझे हटना पड़ेगा। अगर मुझे आत्मा तक पहुंचना है तो समस्त पर पदार्थों से मेरी आसक्ति घटी है कि नहीं घटी है, ये मुझे देखना होगा। ऐसा नहीं हो कि हरी सभी सब्जी छोड़ करके और किशमिश की सब्जी खाना शुरू हो गई। ऐसा ना हो कि एक चीज छोड़ करके 10 और आइटम सुबह से बन रहे हो, ऐसा ना। इन दिनों में जितनी अधिक मैं देखता हूं कि आसक्ति बढ़ती चली जाती है, शायद और बाकी दिनों में ख्याल भी नहीं आता होगा। इतने इतने किस्म के आइटम बनते हैं क्योंकि भैया जी को हरी सब्जी नहीं खाना, इसलिए आइटम बन रहे हैं। और एक ही अगर अनाज खाना है तो एक अनाज के सैकड़ों आइटम जो आजाद हो सकते हैं, शायद किताब पलटी जाती हो कि कौन सा आइटम बन सकता, क्योंकि आज तो अकेला आटे खाना, और आटे की लपसी बन सकती, आटे की नमकीन भी बन सकती, और आटे का मीठा भी बन सकता है, और रोटी बन सकती, और जितने आइटम हो सके उतने बन सकते। क्या इसका नाम आत्मानुसार आत्म अनुसंधान है? ये पर्व तो आत्म अनुसंधान और चित्त की शुद्धि का पर्व है। हमने जो कुछ भी जाना है उसे अपने जीवन में घटित होते देखें, और सबसे बड़ी चीज अपनी प्रतिध्वनियों को देखें इन दिनों में कि क्या रिप्लाई देते हैं। जो जैसा रिप्लाई देता है मानिए वो वैसा है, जो गाली का रिप्लाई गाली से देख देता है मानिएगा कि अभी वो बहुत कमजोर है। और जो गाली का जवाब भी क्षमा से देता है मानिएगा बहुत सशक्त है। जो विनयवान है वो सशक्त है, जो सरल है वो सशक्त है, जो सच्चाई के साथ एक अकेला होने के लिए तैयार है वो सशक्त है। कैसी सशक्तता आप आने वाले दिनों में अपने जीवन में पाएंगे। मुझे याद आता है कि बहुत अपने आत्मा की फिक्र करने वाले एक कनाद ऋषि हुए जिनको अपने ब्रह्म के सिवाय और बाकी चीजों का ख्याल तक नहीं रहता था, और उनका नाम कनाड लोगों ने इसलिए रख दिया था कि वे खेत में जो कटाई हो जाने के बाद दाने गिर जाते ना, उन कणों को बीन करके खाते थे और उससे अपना काम चलाते थे। और ले देकर के उनके पास दो तीन ठो पोथियां थी, ज्ञान प्राप्ति के लिए वे पोथियां पर्याप्त थी और अपने में आनंदित रहा करते थे। जीने का उनका अपना ये ढंग था। कोई ने गाली दी तो मुस्कुरा देते थे, कोई ने धक्का दिया तो उससे संभालने लगते थे कि गिर मत जाना। देखो आप, कोई उन पर हंसता था तो वे उस पर रोने लगते थे। बड़ी अजीब सी प्रक्रिया थी। रिप्लाई पर डिपेंड करता है व्यक्ति किस तरह का है। और एक दिन राजा को जब ये बात मालूम पड़ी कि मेरे राज्य में इतने बड़े ऋषि और कंगन बीन करके खाता है, सारी संपत्ति छकड़ों पर लदवा करके वे पहुंचे उसके पास और कहा कि भगवान स्वीकार करें, ये सब स्वीकार करें, आप मेरे राज्य में होते हुए और इस तरह की दुर्दशा आपकी हो, ये तो अच्छा नहीं लगता। तो कनाद ने कहा कि अभी छोड़ देता हूं तुम्हारा राज्य, अभी छोड़ देता हूं। ऐसा जवाब आप समझे नहीं,
मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा राज्य छोड़ दें, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मेरे राज्य में और
ऐसी ऐसी दुर्दशा आपकी हो अच्छा नहीं मालूम पड़ता। उन्होंने अपनी किताबें बांधना शुरू कर दी तो और मुश्किल पड़ी। वो चरणों में गिर पड़े राजन कि क्या करते हैं आप। बोले उठ, सीमा बता, कहां है तेरे राज्य की सीमा। अभी बाहर हो जाता हूं। एक ने सुनी, राजा ने तो पैर ही पकड़ लिए कि भगवान क्या करते हैं आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये सब आपके लिए लाया हूं। बोले सुन, अगर इनकी फिक्र करूंगा जो लाया है तो इसकी कब करूंगा, ले जा वापिस, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि सबकी फिक्र कर। जिस व्यक्ति को अपनी फिक्र करने की तैयारी है, क्या वो इन बाहर की तैयारियों में लगेगा। और हम देखें इन आने वाले 10 दिनों में कि हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सारी तैयारी ऐसा ना हो कि बाहर बाहर की तैयारी हो और भीतर से चूक जाएं। हम अपने भीतर कुछ जो हमारे वास्तविक है उसे पाने के लिए थोड़ी सी तैयारी करें कि किस तरह हम जीते हैं, और अपने जीवन को बहुत गौर से देखें तो शायद ये 10ों धर्म हमारे जीवन में जो आने वाले हैं वे हम एक दिन के लिए भले ही सही, एक क्षण के लिए भले ही सही घटित होते देखेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि दिन भर में 100 झूठ बोलते हो, 1000 झूठ बोलते हो, एक सच बोल के भी देखना। 100 दफे गुस्सा करने के मौके पर 100 दफे में से 100 दफे गुस्सा कर लेते हो, शायद एक मौके पर शांत रह करके देखना कैसा लगता है। फिर मेरी बात पे अगर अच्छी लगे तो स्वीकार कर देना, वरना जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करना। पर मेरा अपना विश्वास है कि जब क्षण भर के लिए भी हम शांत रह जाते हैं तब बहुत जीवन का आनंद ले पाते हैं, और अगर हम शांत नहीं हो पाते तो जीवन में सारी चीजें हो जाने के बाद भी जीवन का आनंद नहीं आ पाता। आने वाला पर्व
जीवन के आनंद के लिए है, हमारे जीने का ढंग थोड़ा सा हम बदल ले दें और अपनी प्रतिक्रियाओं को सीमित कर ले दें।
प्रतिक्रिया ना करें, या कि प्रतिक्रिया करें भी तो सोच समझ करके प्रतिक्रिया करें, तो शायद ये पर्यूषण हमें अपनी तरफ ले जाने में सहयोगी होगा।
ऐसी भावना के साथ कि हम अपनी अंतरण की तैयारी करेंगे, बाहर की तैयारियां बहुत हुई,
इन बाहर की तैयारियों को स्थगित करके हम किसी अंतरात्मा की तैयारी पर निकलेंगे, ऐसी भावना के साथ मेरे साथ हम ओंकार करें।
मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम्। संसार मे पतितु था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने हटाया, आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज जी की। आप लोग की तो आवाज नहीं निकल रही, कल परसों से शुरू होने वाला पर्यूषण। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की। गहन तिमिश्रा के उपरांत साहस रश्मि अपने किरणों से समस्त पृथ्वी तल को आलोकित कर देता है, यहां तक कि हमारे घरों के छप्परों में से, दरवाजों के छेद में से वो सूर्य की रश्मियां प्रवेश कर जाती हैं और हमें वो जगाती हैं, सचेत करती हैं, उठो प्रभात हो गया है, इस निद्रा को छोड़ो। ठीक इसी तरह हमारे लिए एक ऐसा प्रभात हम सबके जीवन में पुनः आ रहा है, ये बहुत सौभाग्य का क्षण होगा, बहुत ही दुर्लभ क्षण होगा। हर व्यक्ति के जीवन में वह प्राप्त आता नहीं है, भरोसा नहीं है, अभी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावनाएं हैं कि हम सबके जीवन में वह प्रातः काल जो आने वाला है, वह सुबह जो होने वाली है, वो जरूर देखने को हमें मिले। और वह सुबह है पर्वराज पर्युषण पर्व की प्रभाकर अपनी धर्मय किरणों से हम सबके अंतस में ऐसा प्रकाश भरेगा कि जिससे हमारी आत्मा जागृत हो जाए, सचेत हो जाए और हम अपने आप को उस प्रकाश में देख सकें कि हम क्या हैं और हम क्या हो गए हैं, हमें क्या होना चाहिए। ये सारा का सारा परीक्षण करने का अवसर हमें प्राप्त हो, ऐसी संभावनाएं की जा सकती हैं। यह पर्युषण पर्व 17 तारीख से प्रारंभ होने वाला है और यह हम सबके लिए जागृत करेगा। लेकिन क्या क्या बातें इसमें होंगी, ये बहुत सावधानी की है और आज मुझे इस पर्युषण की पूर्व वेला में मात्र उन्हीं बातों को थोड़ा सा यहां समझना है जिससे कि हमारे वो पर्युषण सानंद संपन्न हो। इन दिनों जबकि ये पर्व के दिन हैं, इन दिनों साधना, सजगता और एकाग्रता, इन तीन की त्रिवेणी जिसके हृदय में बहेगी उसके जीवन में आनंद का कमल खिलेगा, उसके जीवन में सुख की खुशबू आएगी। ऐसी खुशबू, वो आनंद का कमल हम सबके जीवन में खिले, इसके लिए हम सावधान रहेंगे, हम अपने आप को तैयार कर लें कि अब हम अपने लिए, अपने आप के लिए अपने को हम तैयार कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं, किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं, अपने लिए, अपने को, अपने द्वारा ही हमें इस सब कार्य करना है, इसलिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। वर्षा होने के पूर्व ही किसान अपने खेत को क्या करता है, संभाल करता है, खेत को संभालने की साधना करता है। तदुपरांत सजगता रखता है, जागृत रहता है कि इस खेत में बीज कब डालना है, कैसे डालना है, सजगता उसकी हुआ करती है। और बीज डाल देने के बाद जब उसमें से अंकुरण होता है, एक नन्हा सा पौधा निकलता है, तो उसके प्रति संवर्धन और संरक्षण की एक एकाग्र दृष्टि भी उसे रखना पड़ती है। ठीक इसी तरह एक किसान की तरह भी हमें अपनी आत्मभूमि को संभालना है, फिर उसमें सजगता के साथ कि क्या डालना है, कब डालना है, वो जो डाला गया है वो पल्लवित हो रहा है तो कहीं कोई कसायों की भैंस हमारी उस पौधे को न चर जाए, इसकी सावधानी, इसकी देखरेख, इसकी एकाग्रता भी हमें रखनी होगी। आज ये तीन बातें हमें बहुत अच्छे से समझने की हैं और उनको ही यहां हम संक्षेप में यहां समझेंगे। पहली बात साधना की है। साधना की भूमिका सादगी पर निर्भर करती है। पर्व आ रहे हैं इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं, आपका मन कहीं यहां वहां तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं ऐसी साधना की बात कहूंगा और आपको हो सकता पसंद नहीं आए, वो साधना की बाद में कहूंगा, पहले सादगी की कहूंगा तो बोर भी नहीं आएंगे। साधना की भूमिका सादगी पर निर्भर करती है। जब तक हमारे भीतर सादगी नहीं होगी, हमारे जीवन में सादगी नहीं आएगी, हमारे मन में, वचन में, उस शरीर में यदि सादगी नहीं आएगी तो ये पर्यूषण की साधना कभी हो नहीं सकती। इसलिए पहले सादगी की तरफ ध्यान देना है, कारण की तरफ पहले ध्यान दो, फिर कार्य कैसा होगा वो कारण ही बता देगा कि तुम्हारा कार्य कैसा होगा। इन पर्यूषणों के दिनों में, इन पर्व के दिनों में अधिकतर देखा तो यही गया है कि चाहे वो पुरुष वर्ग हो या हमारी मां बहन, उन दिनों हम मालूम नहीं कौन कौन से कपड़े निकालते हैं जो शायद कभी नहीं पहने होंगे वर्ष भर में, वो संदूक खोल करके वो नई नई साड़ियां पहन करके हम यहां आते हैं, जो कभी आभूषण नहीं पहनते होंगे वो आभूषण पहन करके हम यहां आते हैं, शायद जो क्रीम पाउडर हम नहीं लगाते होंगे वो भी हम लगा करके यहां आते हैं। ये बात किसी एक की नहीं, सारे समुदाय के लिए है। यदि हमें साधना करना है तो सादगी की बहुत जरूरत है। हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए, हमारी भोजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, हमारी भौतिकता के साधन कैसे होने चाहिए, यदि इन पर हमने विचार किया तो सादगी हमारे जीवन में आ सकती है। हमें वस्त्र पर ध्यान रखना है कि हमें साधना के अनुष्ठान में हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए। जब कोई सैनिक युद्ध स्थल पर पहुंचता है तो उसकी क्या वेशभूषा होती है ये आप जानते हैं। वो धोती कुर्ता में जाकर के युद्ध नहीं करता, उस सैनिक की वेशभूषा में खड़ा होता है, और सैनिक की वेशभूषा में खड़ा होने वाला सैनिक ही वीरत्व को अपने अंदर में जगा सकता है और वो युद्ध करने में समर्थ हो सकता है। ये भी अपने आत्मा के ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं से हमें युद्ध करने की साधना करनी है तो हमें एक वीरत्व को जगाना होगा, उनसे लड़ने की एक शक्ति हमें प्रकट करनी होगी। वो शक्ति तभी हो सकती है जबकि हमारे वस्त्र की ये वेशभूषा यदि सादगी पूर्ण होगी, उस धर्म के अनुष्ठान के अनुरूप होगी तो वे धर्म के अंकुरण हमारे भीतर हो सकते हैं, धर्म की साधना हो सकती है। तो कैसे वस्त्र पहने जाए, रेशमी या कोसा के या और तरह तरह के जो आते हैं उनको पहनना चाहेंगे या सादे, इन दिनों तो यदि हम काटन के सूती वस्त्र पहन करके आएंगे और वो भी सादे सिंपल कलर वाले तो उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर कुछ अलग होगा, और यदि आप भड़कीले कलर वाले और तरह तरह के हिंसात्मक तरीके से निर्मित वस्त्रों को पहन के आएंगे तो आपकी साधना हो नहीं सकती है। मात्र आप मनोरंजन कर सकते हैं पर्यूषण का, पर्यूषण की साधना नहीं हो सकती। हम यदि ये हमारे भाई वगैरह हैं, यदि ये सफेद धोती कुर्ते पहन के या पजामा पहन करके इस दिनों अपनी साधना करते हैं तो इनके ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा। आप लोग यदि सादे वस्त्र पहन करके इन दिनों यदि धर्म साधन करते हैं तो आपके लिए भी उसका लाभ मिलेगा। वस्त्र की सावधानी हमें पहले रखनी होगी, क्योंकि इन दिनों यदि आप भड़कीले वस्त्र पहनेंगे तो आपको तो हानि पहुंचेगी ही, लेकिन हो सकता है किसी देखने वाले के मन में भी हानि पहुंच सकती है, उसका मन खराब हो सकता है। इसलिए इन दिनों हम अपने आप को संभालें और हमारे माध्यम से कोई ना बिगड़े इसकी भी सावधानी हमें रखनी होगी। तो हम वस्त्र की सावधानी रखें, भोजन की, इन दिनों जैसा भोजन करेंगे वैसे परिणाम होंगे, वैसे विचार आएंगे, वैसे साधारणतः तो ये पाया जाता है कि लोग शोध का भोजन करते हैं, शुद्ध पवित्र भोजन करते हैं, बल्कि यहां तो भोजनालय चलता है अतिथियों के लिए। मेरा यहां की कार्यकारिणी से भी निवेदन है कि अपने इस भोजन व्यवस्था में भी इस तरह की शुद्ध सात्विक चीजें रखें और मर्यादित रखें, जो कि कोई आम आदमी भी जो पर्युषण मनाने आए वो भोजन करे तो उसे ये ना कहना पड़े कि भोजनशाला में नहीं करूंगा भोजन। और फिर आपको भी करना है तो अपने घरों में भी इस तरह की शुद्ध भोजन की व्यवस्था यदि आप रखेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, तो आपके मन में पवित्र पवित्र विचार आना प्रारंभ होंगे। और यदि आप अशुद्ध भोजन करोगे तो अशुद्धता ही प्रकट होगी। हमें भोजन की भी सादगी रखना होगी। और भौतिकता के साधनों की तो मैंने पहले बात आपसे कही कि हम कितने तरह के कॉस्मेटिक यूज करते हैं, ये श्रृंगार के साधन चाहे आभूषण हो या कोई क्रीम पाउडर आदि हो, इनसे जितना हम बचेंगे, इनसे जितने हम विरक्त होंगे, जितने सिंपल और सादे होंगे, उतनी साधना हमारी प्रगाढ़ होती चली जाएगी, उत्कृष्ट होती चली जाएगी। तो पहले हम अपनी सादगी को बनाएं, फिर साधना प्रारंभ करें। साधना क्या करनी है हमें इन दिनों? हम अनादिकाल से हम गुलामी में पड़े हुए हैं, हम किसी के गुलाम हैं। अब हमें अपनी गुलामी से मुक्ति प्राप्त करना है और हमें अपनी मालकियत का एक अधिकारी बनना है, मुझे मालिक बनना है, इसकी साधना करनी है। मैं गुलाम किसका हूं? हमारी इस मालकियत के ऊपर चार लोगों ने अपना हमला जमा रखा है, अधिकार बना लिया है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये जो चार हैं ये बड़े दुष्ट शत्रु हैं, इन्होंने ये परचक्र है, इसने आकर के हमारे राज्य के ऊपर शासन प्रारंभ कर दिए, इसलिए हम गुलाम हो गए हैं। अब हमें गुलामी से मुक्त होना है, मालिक बनना है, तो साधना करनी होगी इन शत्रुओं से लड़ने की, इनको दूर भगाने की और अपने राज्य को अपने हाथ में लेने की। तो हम समझेंगे कि हमने साधना इन दिनों की है या नहीं। वास्तव में इन्होंने हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। क्रोध ने क्या किया हमारे लिए? क्रोध ने हमें अंधा बनाया, क्रोध ने हमारी आंखें छीन ली, हमें नेत्रहीन कर दिया, हम कुछ भी नहीं सोच सके, देख नहीं सके, क्या देखना चाहेंगे। क्रोध में आकर के आदमी अंधा हो जाता है और बिना विचार के कुछ भी कर डालता है, ये हमारे ज्ञान के नेत्र फोड़ डालता है, इसने हमारे नेत्रों को चुरा लिया, छीन लिया है क्रोध ने, इसलिए मुझे अंधा बनाया। मान ने क्या कर दिया हमारे लिए? मान ने हमें बहरा बना दिया। हम अपनी प्रतिष्ठा, हम अपनी प्रशंसा सुनने के इतने आदि हो गए हैं कि यदि हम दूसरी बात आप सुनना नहीं चाहते, कल्याण की बात भी हमें पसंद नहीं होती, इसलिए इस मान ने, इस अहंकार ने हमें बहरा बना दिया है, हमारी कर्ण इंद्री को छीन लिया है इसने। आज तो आचार्यों ने वैसे तीन बातों की बहुत पहले संकेत किया था, हजारों वर्षों पहले एक शराबक के लिए, कि तीन चीजों का त्याग उसके जीवन में होना चाहिए, मद, मांस और मधु, तीन मकार की बात कही थी। लेकिन कुछ दिनों से मुझे एहसास हो रहा है कि तीन मकार तो बहुत स्थूल हो गए, लेकिन सूक्ष्म चीजें जो छोटी छोटी हमारे भीतर घुस गई हैं वो तीन और हैं, तीन मकार और हैं, माइक, माला और जहां मैं बैठा हूं ये मंच, ये तीन मकार हैं। माइक, माला और मंच, ये तीन ने हमारे लिए बहरा बना दिया कि हम यही चाहते हैं, यही पसंद करते हैं, इसी में रहना चाहते हैं, इससे दूर नहीं होना चाहते हैं। जहां कहीं भी कहीं हमारा माइक छुड़ाया जाता है या माइक से मुझे वंचित किया जाता है, कहीं माला नहीं पहनाई जाती है या मंच पर नहीं बिठाला जाता है, वहां से हम हट जाते हैं, वहां जाना पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं, हम बहरे हो गए। इस प्रशंसा के आदि होने के कारण अहंकार ने हमें बहरा बना दिया है, हमारी कर्ण इंद्र छीन ले। माया ने क्या किया? माया ने जो चाहे वो करवाने के लिए, चाहे जो कहा है अर्थविहीन कहते रहे। इस जिह्वा ने चाहे जो कुछ कहा, जितना कहना चाहेगी उससे अधिक कहता रहा, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहा है, यहां तक कि पूरे छल मिश्रित इस वाणी ने हमें बर्बाद कर दिया है, इसने गूंगा बना दिया है। जो हमें बोलना चाहिए था, मुझे सत्य कहना चाहिए था, सत्य से वंचित किया है, हम सत्य से बहुत दूर हो गए, सत्य नहीं बोल पाते हैं, हम ईमानदारी का कोई शब्द नहीं बोल पाते हैं, इसने हमें गूंगा बनाया। इस मायाचार ने, इसने हमारी जिह्वा इंद्री को छीन लिया है। लोभ ने क्या किया? लोभ ने तो बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। लोभ एक ऐसा है कि जो चाहे जहां लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति कहीं यदि पाने की कोशिश करता हो, पाने की आशा होती है, तो चाहे जहां हाथ फैला देता है, बेशर्मी से, बेलिहाज, कोई शर्म नहीं होती उसे, और अपना हाथ फैला देता, झोली फैला देता कि यहां से मिल जाए, जहां से मिलता है वहां से बटोरने की कोशिश करता है। इसने हमारी नाक काट ली है, इसने हमें घ्राण इंद्री हमारी छीन ली है इसने, जबकि इससे हमें अपनी इज्जत मनानी थी, अपनी धर्म की, अपने धर्मायतन की और अपने वास्तव में होने की, लेकिन इसने हमें नकटा बना दिया है, नकटा बना दिया है। इस लोभ कसाय ने इसने सारी इज्जत धूल में मिला दी। ये चारों ने चार इंद्रियां छीन ली, मुझे जब चारों एक एक ने एक एक को छीना, जब ये चारों मिलकर के आ जाती हैं, तब क्या होता है? फिर ये हमारे मन पर सवार होती हैं और हमारे मन को, जो मन का हमारा कार्य था हित और अहित का विवेक, अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता हमारे मन पर थी, इन चारों ने हमला कर दिया तो हमारे मन का विवेक जाता रहा, हित और अहित को हम भूल बैठे और क्या हो गया, हम मन से रहित हो गए। इसने हमें असंगी बना दिया है, हमें मन रहित बना दिया है, क्योंकि हम अच्छे और बुरे का कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इन चारों कसायों की वजह से ये विकलांग बनाने वाली कसाएं हैं। हमें विकलांग नहीं बनना, हमें परिपूर्ण अंग वाला बनना है और अपने ऊपर शासन करना है अपने आप का, तो हमें साधना करनी होगी इन कसायों से बचने की, इनको दूर करने की, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की। इस साधना का पहला सिद्धांत हमारा इन दोनों का होना चाहिए कि जिस किसी भी तरह से जितना भी हो सकेगा उतना उतना हम इन कसायों से विरक्त होंगे, मुक्त होंगे, इन पर विजय प्राप्त करेंगे, तो हमारा परिश्रम सार्थक होगा। ये रही हमारी सादगी की बात और साधना की। इसके बाद में सजगता, सजगता बहुत जरूरी है। सजगता के मायने हैं सावधान होना, सचेत होना, अप्रमत्त होना और चौकन्ना रहना, ये सजगता के मायने हैं। इन दोनों हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि यहां जो कुछ भी हमारी चेतना की भूमि में धर्म के बीज डाले जाएंगे, उन बीजों को किस सावधानी के साथ हमें डालना है इसकी सजगता हमें रखनी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रमाद कर जाएं, हम आलसी हो जाएं। हम आए तो परिचय पर्व मनाने थे, आए तो हम प्रवचन सुनने थे, लेकिन प्रवचन सभा में बैठे और नींद आने लगी, क्या हो गया? प्रमाद ने घेर लिया। हम सजग नहीं रहे। हम आए थे भगवान की पूजन करने के लिए, लेकिन पूजन करते करते इतने प्रमत्त हो गए, इतने गाफिल हो गए कि पूजन तो एक तरफ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसी में लग गए। कहां रही हमारी सजगता? जिस अनुष्ठान को लेकर हम यहां बैठे थे उसमें हमें इतने सजग होना चाहिए कि सारा अनुष्ठान हमें फल देकर के जाए, हमारा कोई भी अनुष्ठान निष्फल नहीं होना चाहिए। ये सजगता हमें रखनी होगी। सजगता नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा। जो सजग होगा उसके जीवन में ही सब कुछ आएगा, जो सजग नहीं होगा उसके जीवन में कुछ नहीं आ सकता। एक भाई साधना करने बैठे, कहीं से गुरु मंत्र उन्हें मिल गया, मोती मनाने का गुरु मंत्र मिल गया। घर आए, उन्होंने अपनी श्रीमती से कहा कि देखो मैं साधना कर रहा हूं, 12 घंटे की साधना है और इस साधना में मैं मंत्र पढ़ूंगा, और जब हमारा ये मंत्र का जाप पूरा हो जाएगा उस समय हुंकार भरूंगा, यानी एक संकेत करूंगा, और तुम क्या करना, तुम एक चूल्हे के ऊपर एक भगोनी में बहुत सारा पानी रख देना और इतना गर्म उसमें करना, इतना उबलता रहे वो पानी, और ज्वार के दाने रख लेना। जब मेरा जाप पूरा हो मैं संकेत करूंगा उसी वक्त तुम वो ज्वार के दाने उस पानी में डाल देना, तो क्या होगा, मोती बन जाएंगे सबके सब। उस ग्रस्त ने साधना प्रारंभ की, उसकी श्रीमती ने चूल्हा से लगाया, भगवानी रखी, पानी गर्म किया और ज्वार के दाने भी रख लिए पास में, और वो साधक अब मंत्र की जाप कर रहा है, साधना कर रहा है। साधना करते 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 रात के 12 बज गए, और जब 12 बजते हैं तो गहन निद्रा का टाइम होता है, और उसी वक्त उसका जाप पूरा होगा, और उसने हुंकार भरा कि मेरा जाप हो गया है। लेकिन उसी वक्त उसी की श्रीमती को थोड़ी सी निद्रा ने सताया, वो भूल गई तो उसका मंत्र पूरा, क्यों तुमने नहीं किया, अरे हमें नींद आ गई। फिर उसने बाद में उसमें डाले तो कुछ नहीं, वो तो खीर बन गई, फिर तो ज्वार की खीर, वो मोती नहीं बने। लेकिन देखा क्या कि सुबह सुबह पड़ोसन ने एक कटोरी में मोती ला करके उसे भेंट की गई। अरे ये कहां से लाए, आपकी ही कृपा है। बोले हमारी कृपा? हाँ आपकी ही कृपा से मैंने ये प्राप्त किया है। अरे हम प्राप्त नहीं कर पाए अपनी कृपा से, ऐसे ही होता है, हम अपनी कृपा अपने ऊपर दूसरा कर लेता है। यहां जो सजग होगा वो अपने आप पर कृपा करेगा। तो उसने, आपने कैसी कृपा? बोले कि जब आपने अपनी श्रीमती को समझाया तो मैं खिड़की में से सुन रही थी कैसा करना है, तो मैंने चूल्हा से लगा लिया, बर्तन रख लिया, पानी गर्म कर लिया, ज्वार के दाने रख लिए, मैं ये देख रही थी कब आपका जाप पूरा होता है, और आपने जैसे संकेत किया मैंने ज्वार के दाने पानी में डाल दिए, सारे के सारे दाने मोती बन गए, ये आपकी ही कृपा है। वो पड़ोसन बहुत सजग थी, सावधान थी, अप्रमत्त थी कि किस वक्त मुझे इस पानी में ये ज्वार के दाने डालने हैं, उसी समय डालेंगे तो मोती बनेंगे, थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद में डालोगे तो कुछ नहीं बनेगा, उसमें खीरा हलवा बन सकता, कुछ नहीं हो सकता है। ये सजगता का परिणाम है कि मोती बने, और ये हमारे प्रमाद का दुष्परिणाम है कि कुछ भी नहीं हासिल हो पाया। इन दिनों कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस प्रमत्त दशा के कारण, हमारे इस प्रमाद और आलस्य के कारण, असावधानी के कारण एक पर्यूषण के धर्म के बीच कहीं ऐसा ना हो मिट्टी में मिल जाए और चले जाए। हमें सावधान रहना है कि धर्म के बीच अंकुरण मोती के रूप में हो और हम उस मोतियों को पाकर के निहाल हो जाएं, धनवान हो जाएं, फिर कभी हमें किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े, ऐसा धन ऐसा वैभव हमें प्राप्त हो जाए, हमें अपने गुणों का प्राप्त होगा। इस सजगता की बात रही। और अंत में मुझे 5 मिनट में एक तीसरी बात और कहनी है। आपका समय पूरा हो रहा है और मेरा भी हो रहा है, महाराज श्री को भी सुनना है। एकाग्रता, इन दिनों हम जो भी अनुष्ठान करेंगे, चाहे वो पूजन का हो, स्वाध्याय का हो, उपदेश सुनने का हो, सामायिक का हो, ध्यान का हो, या और कोई भी जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, तल्लीनता होनी चाहिए। यदि एकाग्रता नहीं होगी तो सारे अनुष्ठान हमारे फेल हो जाएंगे, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इतनी की हुई साधना, इतनी रखी हुई सजगता सब बेकार चली जाएगी। यदि उसमें एकाग्रता नहीं रही तो सब फेल हो जाएगा। इसलिए एकाग्रता की भी बहुत बहुत आवश्यकता है। एकाग्रता अर्थात हमारे मन की निश्चल दशा। हमारा मन बड़ा चंचल है, चलायमान है, या यूं कहिए कि मन चंचल है, या चंचलता का नाम ही मन है। बड़ा विचित्र है हमारा मन। रोज रोज महाराज के पास प्रश्न आते होंगे, हमसे भी लोग पूछते हैं कि महाराज जी मन को कैसे रोका जाए, मन को कैसे बस में किया जाए, कोई उपाय तो बताओ, मन बड़ा चंचल है। एक दिन मैंने आपको सुनाया था कि मन बहुत चंचल होता है। कैसा चंचल होता है? जैसे कि बंदर चंचल होता, वैसा हमारा मन चंचल होता है। बंदर एक जगह नहीं रुकता कभी, लेकिन मन इससे भी ज्यादा चंचल है। बंदर जैसा नहीं है, बंदर से भी ज्यादा चंचल। बोले कितना चंचल है? कि बंदर हो और बंदर के लिए किसी ने शराब पिला दी हो तो शराब पी लेने से बंदर की चंचलता और कितनी बढ़ जाएगी और दूनी हो जाएगी। तो कहते हैं मन इससे भी ज्यादा चंचल है। इससे भी ज्यादा? कितना ज्यादा है? बोले कि बंदर है, शराब पी ली है,